ओम शांति। माननीय ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ला जी पधार चुके हैं। भाई बहनों से अनुरोध है, ग्लोबल समिट 2024 के इस वैलिडिक्टरी सेशन में सभी अपना स्थान ग्रहण करें। ग्लोबल समिट 2024 ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, इसमें भिन्न भिन्न सेशंस आपने अटेंड किए, बहुत कुछ सुना, अच्छा अनुभव किया। बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेशनलिज्म के इस दौर में आप भाई बहनें जो अपने क्षेत्र में बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी देश विदेश के कोने कोने से पधार कर इस ग्लोबल समिट 2024 की शोभा बढ़ाई। आप सब खड़े रह करके स्वागत करेंगे माननीय ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ला जी का सम्मान पूर्वक तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में हमारे साथ हैं मधुर वाणी ग्रुप। सूरज की किरणें हैं आपके सम्मान में, वसुंधरा मुस्कुरा रही है आपके सम्मान में, मधुर वाणी ग्रुप गीत गा रहा है आपके सम्मान में। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। वैश्विक शिखर सम्मेलन में सभी माननीय वक्तागण, बहुत ही प्रिय अतिथिगण आए और आप सब यहाँ पर आए, आज की इस कार्यक्रम को समापन नहीं कहेंगे, ये शुभारंभ है। यहाँ विदाई नहीं होती है, यहाँ दिल की बधाई दी जाती है। हम सब मिलते रहेंगे और इस कार्य को अंजाम तक लेकर चलेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लें।
स्वागत की वेला कहे क्यों विदाई, विदाई नहीं है ये दिल की बधाई। स्वागत की वेला कहे क्यों विदाई, विदाई नहीं है ये दिल की बधाई।
समापन नहीं ये शुभारंभ भाई,
समापन नहीं ये शुभारंभ भाई, विदाई नहीं है ये दिल की बधाई। ये स्वागत की वेला कहे क्यों विदाई, विदाई नहीं है ये दिल की बधाई। अध्यात्म से सब ही ज्योति जगाए,
चलो बाल भारत का मिलकर सजाए
हो स्वर्णिम सवेरा संग चलते रहेंगे न बिछुड़ेंगे हम अब तो मिलते रहेंगे
दिल की ये बातें दिल से है कहते बड़े भाग्य से हमने दुनिया ये पाई समापन नहीं ये शुभारंभ भाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई ये स्वागत की बेला कहें क्यों विदाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई योजना आप विनती अधूरी आना यहाँ आपका था जरूरी ये घड़ियाँ न भूलेंगे हमको यकीन है यही होगा मन तन भले ही कही है
अपना ही घर है अपना ये रिश्ता अपनों से होती कभी ना जुदाई
विदाई नहीं है ये दिल की बधाई यहाँ की नयन से दिखाना वाणी से अनुभव के मोती लुटाना
अपने सभी सब प्रभु से मिलाना संग ले सभी को है जल्दी से आना
बाबा के संग संग हम सारे कहते यही बात दादी ने दिल से सुनाई समापन नहीं ये शुभारंभ भाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई ये स्वागत की बेला कहे क्यों विदाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई विदाई नहीं है ये दिल की बधाई
बहुत बहुत विशेष धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कुछ समय स्थान पर बैठे रहें आगे आकर के बैठें माननीय डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी हमारे साथ हैं सचमुच ये सत्र विदाई का नहीं लेकिन नई राह पर चलने की बधाई का सत्र है आज इस समापन सत्र का विषय है ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय इसी विषय पर आज हमारे विशिष्ट वक्ताएं अपने अपने अनुभव युक्त विचार हमारे समक्ष रखेंगे मंच की शान है हमारे वक्ता हमारे मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार करें ब्रह्मा कुमारी बहने, इलायची की माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, पगड़ी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं मोमेंटो के द्वारा स्वागत हो रहा है, और आप सभी करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आदरणीय राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध है कि आज शब्दों से स्वागत पुष्प हम सब पर बरसाएं।
अभी मालूम पड़ता है आप सभी नाश्ता नहीं किया, इसके लिए आवाज कम आ रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा की अवतरण भूमि पर, ईश्वरीय शिक्षा की धरती पर, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि पर, दादी दीदियों की तपस्या भूमि पर आज वैश्विक शिखर सम्मेलन का पांचवा दिन का समारंभ है। इस समारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा देश के यशस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ला जी उपस्थित है। हम सभी करताड़न करके उसको हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे देश का राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने शुभारंभ किया था। इसके बीच में चार दिन की सत्र समापन होकर के आज अंतिम सत्र का आरंभ हो रहा है। अंतिम सत्र ने विधाई का सत्र नहीं, ये वधाई का सत्र है। आज की दुनिया में देखते कि इस तरफ कहाँ खड़ा है, क्या हो रहा है, क्या सारी दुनिया में, एक तरफ सारी दुनिया अस्त्र शस्त्र के ढेरे पर खड़े हैं, ऐसे समय पर बहुत जगह में युद्ध, एक आंतरिक युद्ध भी है, एक वैश्विक युद्ध भी चल रहा है, परंतु केवल एक कुछ ही स्थानों पर युद्ध नहीं चल रहा है। मनुष्य ने युद्ध को अपने मस्तिष्क पर, अपने मस्तिष्क तक लेके आया। मन ही मन में युद्ध चल रहा है, ईर्ष्या द्वेष नफरत वैराग्य के आधार से, परंतु जब तक इसको स्वच्छ नहीं करेंगे, जब तक इसको संपूर्ण समाप्त नहीं करेंगे, तब तक सुख शांति अनुभव नहीं कर सकते। परंतु इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा राजयोग के माध्यम द्वारा स्वच्छ का मन, स्वच्छ का तन, स्वच्छ का जीवन और स्वच्छ परिवार, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ दुनिया बनाने का और स्वस्थ दुनिया बनाने का एक सहयोग है। हमारा भारत सरकार इस दिशा में भी सोच रहे और कर रहे काम। हम दोनों मिलकर के भारत को यशस्वी भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत और विकसित भारत और गरीबी से मुक्त भारत, क्राइम फ्री, डिसीज फ्री और पॉल्यूशन फ्री, पॉवर्टी फ्री, ऐसे एक भारत बनाने का संकल्प है। इस संकल्प के साथ जुड़े हुए राजेंद्र शुक्ला जी साहब को और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे कार्य को हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः स्वागत करके इस संदर्भ में हम सबको सदा प्रेरणा स्रोत हमारा आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी उपस्थित है, चंद्रिका बहन जी हैं, पांडेमणि जी है। आज कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन में ईश्वरी विश्वविद्यालय का यूथ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूथ कार्यक्रम में भाग लिया हुआ हमारा साक्षी बहन है और चंदा बहन है, इन सबका स्वागत करके मैं स्वागत वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, नमस्ते।
अंतर मन से धन्यवाद आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी का, प्यार से सबका स्वागत करने वाले मृत्युंजय भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ साक्षी कमलापुरे जी, यूएसए रिटर्न है, फाउंडर ऑफ यूथ एम्पावरिंग सेंटर एंड कॉलेज फ्रॉम पूना, awarded as youngest wellness and spiritual coach, UN में youth programs करने वाली साक्षी जी से आज अनुरोध है कि अपने अमूल्य विचार आज के सब्जेक्ट पर बताएं, bridging science and spirituality for sustainable development, आध्यात्मिक और विज्ञान के समन्वय से समाज का सतत विकास होगा, साधन और अतीन्द्रिय सुख सबके पास होगा, विज्ञान और आध्यात्मिक समन्वय से ही सर्वश्रेष्ठ जीवन होगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं आध्यात्म और विज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का संगम हो जाए तो मंजिल मिल जाए, जीवन आसान हो जाए। इसी विषय पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय साक्षी कमलापुरे।
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू चंदाबेन। आप सभी इस महान आबू तीर्थ पर शांतिवन ईश्वरीय घर में इस ग्लोबल समिट पर पधारे हैं, तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यवान और विशेष आत्माएं हैं जो विश्व कल्याण के लिए निमित्त है। तो सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप स्वयं भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है, आप जहान के नूर है जो ग्लोबल समिट द्वारा ग्लोबल सॉल्यूशन से ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने वाले हैं। तो बहुत बहुत आपका दिल से स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है, साइंस एंड ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज हम साइंस और साइलेंस की शक्ति से हम क्लीन और हेल्दी सोसाइटी ला सकते हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम वो ज़रूर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि साइंस से टेक्नोलॉजी से हम बाहर की ऊंचाइयों को तो छू रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात है, हमें छूना भी चाहिए, पर क्या आज हम आंतरिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हमारे अंदर आंतरिक शक्तियों को हम पहचान रहे हैं? तो वो भी हमारे अंदर वो बैलेंस हमें लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे पास आईफोन है, आईपैड है, आईपॉड है, जो हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं, बट क्या आज हमारे पास ऐसा आईफोन है जो हमें खुद के साथ, आई के साथ कनेक्ट हो पाए, ऐसा है जो हम खुद के साथ बातें कर सकें, जो हम खुद के बातों को, विचारों को, इमोशंस को, फीलिंग को समझ सके। तो वो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कैसे डील करें, कैसे हमारी लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग को ओवरकम करें। और जब मैं युवा वर्ग से ये बात कहती हूँ तो वो तो कहते हैं 60 साल के बाद हमें मेडिटेशन करना है, हमारे लिए तो ये मेडिटेशन नहीं है। बट मैं कहती हूँ कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं, युवा वर्ग में ही हमें चैलेंजेस आते हैं और अभी हमें अभी करना चाहिए। और इसलिए जब हमारा पहला स्वदर्शन चक्र ऐसा था, उंगली ऊपर थी, फिर बाद में हमारी उंगली यहाँ आ गई, हम औरों के ऊपर ब्लेम करने लगे कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे खुशी हुई, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। हमारी पावर हमने औरों को, सिचुएशंस को, पर्सन्स को दे दी। पर आज हमें फिर से हमें अपने अंदर वो पावर लेनी है। और अभी हालत हमारी ऐसी है कि हमारी उंगली फोन के ऊपर है, हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, और पहले तो जो नोन थे उनके साथ हम कंपेयर करते थे, अभी तो जो अनजान व्यक्ति हैं, अननोन हैं, हम उनके साथ अपनी जीवन की कंपैरिजन करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम लेते हैं, हमारे अंदर हम ओवरथिंक करते हैं, हमारी एनर्जी को हम ड्रेन करते हैं। तो हमें स्वदर्शन चक्र घुमाना है, न कि परदर्शन। तो अभी हम कुछ समय के लिए हम स्व का दर्शन करेंगे। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप सीधा बैठे, हम 5 मिनट कुछ मेडिटेशन करेंगे। ओके, सभी सीधा बैठे, लंबा श्वास ले और छोड़े। लंबा श्वास ले और छोड़े। बाहर की सभी आवाजों से अपना ध्यान हटाते हुए अपनी ओर केंद्रित करें। कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर और देखें अपने विचारों को, कौन से विचार चल रहे हैं मन में, मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं वैसे आपके विचार शांत होते जा रहे हैं, आपका मन शांत होते जा रहा है। और अपने मन को एक सुंदर सा संकल्प दे, मैं एक शांति का सितारा हूं। जो परम धाम से इस धरा पर, इस 5 तत्वों की दुनिया में अपना पांड बजाने के लिए आया हो, देखे अपने घर को, घर वालों को जहां पर अपना पाठ है, और दिल से शुक्रिया अदा करें इस परमात्मा का कि हमें इतना सुंदर रोल मिला है। और महसूस करें कि मुझ सितारे से शांति की, प्रेम की, खुशियों की, शक्ति की किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही है। मेरे घर का वातावरण बहुत शक्तिशाली, खुशियों से भरा हुआ है। मेरे सारे घर वाले बहुत खुश है। मेरा घर सुख, शांति, संपत्ति से भरपूर है। और महसूस करें मुझ सितारे से मेरे पूरे नेबरहुड, सिटी, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, पूरे विश्व में वो किरणें फैल रही है, क्योंकि मेरा पूरा विश्व एक परिवार है। 5 तत्वों को भी वो किरणें मिल रही है देखे पूरा विश्व सुख शांति शक्तियों से भरपूर है। हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। लंबा श्वास ले ओ। ओम शांति। तो मेडिटेशन इजी है या हार्ड है, आप क्या समझते हैं? मेडिटेशन बहुत इजी है, सहज राजयोग है ना? और जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अभी हम यूएन समिट में गए थे, तो वहां पर थ्योरी से प्रैक्टिकल में कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, इसके बारे में बहुत सारी बातें की एंड दे वर रियली बेस्ट। पर हम जब उसको ब्रिज करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट गोल भी साथ साथ होना चाहिए। तो जो प्रोसेस है, वो जो ब्रिजिंग है और सक्सेस है, वो हील हार्ट के साथ हील वर्ल्ड के लिए होगी। तो जो पहले हम 2 SDGs देखेंगे, समय का सिर्फ 2 हम देखेंगे, तो पहले के जो 2 है, नो पावर्टी और जीरो हंगर। तो हम जब कल देखते हैं कि हम दाता के बच्चे हैं, हम लेने वाले नहीं पर देने वाले हैं, पर हमारे पास अब सब कुछ है, परिवार है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो इनर सेटिस्फैक्शन की कमी है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसको फुल करती है, स्पिरिचुअल लव है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको वो कंप्लीट करती है। इसी तरह से हमें सारे SDGs सेल्फ डेवलपमेंट गोल के साथ पैरेलली चलाना है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। और साइंस में कहा जाए तो कहा गया है कि हमारे थॉट्स कॉन्शियस पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करती है। तो ये जापनीज साइंटिस्ट यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट सभी ने प्रूफ किया हुआ है कि कैसे हमारे कॉन्शियसनेस हमारे प्रकृति को कंट्रोल करती है। तो हमें अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखना है, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर ध्यान रखना है, और ये स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन राजयोगा ब्रह्मा कुमारी हमें यही सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो यही मैं कहूंगी, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखे और दुआएं दे और दुआएं ले। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
सतत विकास की विश पावर प्रैक्टिकल स्वरूप देखने के लिए चाहिए विल पावर, और उसके लिए है राजयोग मेडिटेशन, जिसकी सुंदर अनुभूति कराई साक्षी बहन ने, आपका दिल से शुक्रिया। अब मैं सविनय आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी को। आप ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल हैं। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी जहाँ जाते हैं उमंगों के दिए जलाते हैं, अपने अनुभव से, अपनी वाणी से आध्यात्म के सुमन खिलाते हैं। भाई साहब से अनुरोध है कि आशीर्वचनों से हम सबकी झोली भर दें।
ओम शांति। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ला जी, डिप्टी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, मंच पर सुशोभित अन्य भाई और बहनों और सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, बात हो रही है विज्ञान की शक्ति की और अध्यात्म की शक्ति की और दोनों के समन्वय की। विज्ञान की शक्ति को प्रयोग करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है, अर्थात मानव ही विज्ञान की शक्ति का प्रयोग करता है। फर्क यह है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है या आत्मा की शक्ति है, उसमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है, ठीक और गलत की पहचान होती है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। और विज्ञान की शक्ति में ये पहचान नहीं होती है। इसलिए जब मानव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आत्मा है, तो विज्ञान की शक्ति का वो उपयोग सकारात्मक तरीके से करता है। लेकिन अगर विज्ञान की शक्ति मानव की शक्ति को ओवर पावर कर ले, यानी मनुष्य विज्ञान का इतना आधार लेना शुरू कर दे कि अपने आप से भी विज्ञान को ऊंचा समझने लग जाए, जैसे कि उसको सुख शांति केवल विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, तो वो फिर हानिकारक हो जाता है। आज हम क्या देख रहे हैं कि जितना जितना मानव ने विज्ञान का आधार लिया, आदिकाल में भी विज्ञान का आधार लिया जाता था, हमारे देवी देवताओं के काल में, सतयुग में भी पुष्पक विमान होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन वो इस प्रकार की इन्वेंशंस होती थी जिनसे कभी किसी की हानि नहीं होती थी, नुकसान नहीं होता था, कभी पुष्प विमान का क्रैश नहीं हुआ, इस तरह से था, उनकी गति कंट्रोल की जाती थी और हर चीज सदुपयोग में लाई जाती थी। परंतु धीरे धीरे मानव ने विज्ञान का आधार लेना शुरू किया। अब आप देखिए कि विज्ञान तुरंत रिजल्ट देता है। आप कोई चीज ठंडी चाहते हैं तो विज्ञान आपको तुरंत ठंडी करके देता है, गर्म चाहते हैं तो गर्म करके देता है। तो इसलिए मनुष्य समझता है कि विज्ञान एक बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। आप गौर से देखिए, मानव के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि अगर मानव संकल्प करे तो अपने गुस्से को ठंडा कर सकता है, और अगर बिल्कुल ठंडा ठाकुर है तो अपने संकल्प से अपने आप को उमंग उत्साह में भी ला सकता है। ये सारी शक्तियां आत्मा में भी मौजूद है, परंतु जितना जितना हम विज्ञान पर आधारित होते गए, तो एंड में नतीजा ये निकला कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक शक्तियों को प्रयोग कम करता गया और विज्ञान का आधार लेता गया। आज तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं, जिसका नतीजा सब सोच रहे हैं अति भयानक और विनाशकारी होगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि विज्ञान की शक्ति का सदुपयोग करते 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 जब मानव की बुद्धि में कुछ डिफेक्ट आ गया, जिसको भगवत गीता में कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, तो उसने विज्ञान का प्रयोग करके परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए। आज ये बहुत गंभीर विषय है कि मानव ने मानवता के ही टोटल विनाशकारी शस्त्र तैयार कर लिए हैं। आजकल हम इनको मिसाइल्स कहते हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन मूसल के तौर पे आया है कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाले थे जिससे अपने ही कुल का विनाश कर लिया था। आज हम सब लोग स्थिति को देख रहे हैं। इसी प्रकार से लोभ के कारण विज्ञान का दुरुपयोग करके प्रकृति का खनन किया है, शोषण किया है मानव ने। आज प्रकृति भी आप देखेंगे कि खड़ी हो गई है, वो सेवा करने की बजाय हानिकारक चीजें कर रही है। जहां कभी फ्लड नहीं आया था वहां फ्लड आ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो कहने का भाव ये है कि विज्ञान में अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, विज्ञान भला बुरा नहीं सोच सकता, इसलिए उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति अगर सात्विक है, आत्मा श्रेष्ठ है, तो विज्ञान का सदुपयोग करेगा, वरना अगर उसके अंदर कोई विनाशकारी वृत्ति आ गई या लोभ की वृत्ति आ गई या एक दूसरे से दुश्मनी की वृत्ति आ गई तो वही विज्ञान विनाशकारी हो सकता है। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार के विज्ञान का प्रयोग हो रहा है वो विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा समय आएगा जबकि आत्माएं सतोगुणी हो जाएंगी, आत्माएं श्रेष्ठ हो जाएंगी, तो इसी विज्ञान का वो सदुपयोग करेंगी। इसलिए हम इस विषय को इस तरह से देखेंगे कि आपस में इनका समन्वय या सामंजस्य होना तो आवश्यक है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर इसको कोई विनाशकारी व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है तो विज्ञान हानिकारक हो जाता है, और अगर इसको कोई सात्विक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है तो विज्ञान लाभदायक हो जाता है। ओम शांति।
आशीर्वचनों से धन्य करने के लिए राजयोगी भ्राता बृजमोहन भाई जी का अंतर मन से शुक्रिया। अब हमारे सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने आज ग्लोबल समिट 2024 के माहौल को रोशन कर दिया। माननीय ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, आपका सम्मान पूर्वक तालियों से स्वागत है। आपसे अनुरोध है अपने सुविचारों से हमें मार्गदर्शन दें।
ग्लोबल समिट के इस समापन सत्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित संगोष्ठी पर मंच पर विराजमान जिनके विचारों को भी हम लोगों ने सुना, श्रद्धेय राजयोगी बृजमोहन जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय मृत्युंजय जी, आदरणीय साक्षी कमलापुरे जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी बहन, मंच पर उपस्थित अतिथिगण और यहां पर उपस्थित देवी और सज्जनों, काफी लंबे समय से माउंट आबू चलना है ऐसा, जहां से मैं आता हूं रीवा से, वहां में जो आपका केंद्र है, श्रद्धेय निर्मला बहन जी और प्रकाश जी से पिछले लगातार 15 वर्षों से ये बात होती थी कि माउंट आबू चलना है, माउंट आबू चलना है। आज ईश्वरीय कृपा से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं यहाँ पर आ सका हूँ, और ऐसे समय में जब 4 तारीख से यहाँ पर ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर और तमाम तरह के लोग यहाँ पर आकर और इस ग्लोबल समिट में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आपके बीच में शिव बाबा के इस तपोस्थली में जहाँ से शांति का संदेश देश और दुनिया में फैलाया जा रहा है वहाँ पर आने का इस पवित्र भूमि में मुझे मौका मिला है। अभी श्रद्धे ब्रजमोहन जी कह रहे थे कि विज्ञान और अध्यात्म का विषय जो है ये मामला सदुपयोग और दुरुपयोग का है। यदि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होगा तो दुनिया में सुख चैन अमन स्वास्थ्य सभी प्रकार की खुशी मानव समाज को मिल सकती है। लेकिन वही दूसरी ओर यदि इसका दुरुपयोग होगा तो विनाश भी हो सकता है। विकास वरदान भी बन सकता है और विकास अभिशाप भी बन सकता है। मुझे याद है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहां पर और उन्होंने कहा था कि मनुष्य ने पक्षी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिया, समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन मनुष्य जमीन पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया है। ये उस समय की बात है जब टेक्नोलॉजी और साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी, उस तरक्की का सपना देख रहे थे। लेकिन आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आज तो और ज्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है। अब तो सारी दुनिया हमारे मोबाइल पर है। एक और देश और समाज की में खुशहाली रहे इसका चिंतन करने वाली संस्थाएं हैं जैसे ब्रह्म कुमारीज है, वहीं दूसरी ओर समाज को तोड़ने वाली शक्तियां भी सक्रिय हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है इसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें इस खतरे से अनजान भी नहीं रहना है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई वर्तमान में जिस प्रकार से चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग मौत के नींद में सुलाए जा रहे हैं, इसका मतलब मानवता के सामने बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे का सामना कैसे होगा ये यक्ष प्रश्न है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि ब्रह्म कुमारीज ने अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ग्लोबल समिट का आयोजन किया है। ये प्रासंगिक है, ये समय की मांग है। यदि आज दुनिया इस बारे में विचार नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ी इसको भुगतेगी और इसका दोष वर्तमान पीढ़ी पर आएगा, हम लोगों पर आएगा कि हम लोगों ने समाज को जागृत नहीं किया, हमने उनको क्या सही है क्या गलत है इसका रास्ता नहीं दिखाया, हमने इनको शांति का पाठ नहीं पढ़ाया और इसलिए आने वाली पीढ़ी हमको दोषी मानेगी। इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम मनुष्य को प्रेम करुणा, मैंने एक बार सुना था कि मनुष्य के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि वो ओवरफ्लो होने लगे, प्रेम बहे मनुष्य के व्यक्तित्व से। यही तो शिव बाबा ने हमको सिखाया है, यही तो प्रकाशमणि दीदी जी ने हमको सिखाया है और इतनी मजबूत फाउंडेशन उन्होंने स्थापित की है कि 37 से लेके आज तक ब्रह्म कुमारीज भले विकृतियां बढ़ी हों लेकिन ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन का हौसला कम नहीं हुआ है, वो हौसला भी उसी प्रकार से बढ़ता चला गया और इसे लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं इस प्रकार के संस्थानों को कि रास्ते से भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने का काम ब्रह्म कुमारी जैसे इंस्टीट्यूशन करेंगे। लोग आपको आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और इसलिए रास्ता क्या हो सकता है, अध्यात्म के क्या है, अध्यात्म कैसे मनुष्य को की आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और मनुष्य क्या है, आत्मा के बिना मनुष्य। मैं आप ही की पुस्तक में पढ़ रहा था सुबह की, शरीर तो वस्त्र है, आत्मा ही सब कुछ है और यदि आत्मा के शुद्धिकरण का काम नहीं होगा तो मनुष्य कभी भी ना तो खुद सही रास्ते पर चलेगा और ना समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकेगा। इसलिए आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को मजबूत करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि चार प्रकार के सुख मनुष्य के लिए जरूरी है, मन बुद्धि आत्मा और शरीर। मन का सुख जब हम जाते हैं और कोई चीज हमारे मन की हो जाती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम कहते हैं आज मन प्रसन्न है। दूसरा है बुद्धि का सुख, कोई साइंटिस्ट ने कोई चीज पर रिसर्च कर रहा है और जिस रिसर्च को कर रहा है उसका परिणाम मिल गया तो वो अपने बुद्धि का सुख, उसको लगता है कि मैंने ये आविष्कार किया है, वो बुद्धि का सुख है। और तन का सुख, मनुष्य को भोजन वस्त्र आवास गाड़ी ये जब सुख प्राप्त हो जाते हैं तो तन का सुख है, लेकिन जो चौथा सुख है वो सबसे महत्वपूर्ण सुख है, आत्मा का सुख। मनुष्य कहता है ना, जब कोई मां आती है और बच्चा दौड़ के उसके छाती से लिपट जाता है तो उसको आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा का सुख हो जाता है। मनुष्य कहता है कि मुझे आत्मिक प्रसन्नता हुई है। तो सबसे अच्छा सुख माना गया है आत्मा का सुख, और आत्मा के सुख के लिए रास्ते क्या हो सकते हैं, आत्मा की शुद्धता कैसे हो सकती है, ये हमारी बहन ने अभी हमको मेडिटेशन करा के एहसास कराया है। मैं सुबह 3:30 बजे आज उठ गया था और 4 बजे मैं आपके मेडिटेशन हॉल में पहुंचा था और 45 मिनट हमने वहां पर मेडिटेशन किया। हालांकि मेडिटेशन मैं पहले भी सीख चुका था, लेकिन हम लोग राजनीति में काम करने वाले लोग का सोना और जागना बहुत अपने हाथ में रहता नहीं है और इसलिए हम लोग इस सुख से कभी कभी वंचित हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जब गाड़ी में चलूं तो उस समय आंख बंद करके मेडिटेशन कर लूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शरीर की बहुत सी व्याधियां भी मेडिटेशन से दूर हो जाती हैं और बुद्धि को तो एक एनर्जी मिलती ही है और मेडिटेशन हमको सदमार्ग में चलने की प्रेरणा भी देती है। और यदि मनुष्य का मन ठीक है, डूज एंड डोंट्स मालूम है, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो साइंस का सदुपयोग करना फिर हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगा। भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमिक स्थिति 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है, क्योंकि धन भी चाहिए। यदि हमें विकास करना है, अपने लोगों की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है तो हमें सड़कें बनानी पड़ेगी, हमें रेलवे की लाइनों का विस्तार करना पड़ेगा, हमें सिंचाई की नहरें बनानी पड़ेगी, हमको एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे, हमें स्पीड और स्केल पर काम करना पड़ेगा, हमें हेल्थ और एजुकेशन आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, गरीब से गरीब आदमी, ठेले धकाने वाला, खेतों में काम करने वाला अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चिंत रहे और अपने बुजुर्गों के इलाज के लिए निश्चिंत हो जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकारें तभी उठा पाती हैं जब उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, तो हम सबके लिए बड़ी संतोष की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो 11वें नंबर पर थी, जो हमारे यहां मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सके वो उपलब्ध कराने की स्थिति में हमारी सरकारें नहीं होती थी। कितना दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में लोग मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें में एक एक घंटे इंतजार करके वोट डालते हैं, और बाद में वो पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या को लेके नेताओं के चक्कर लगाए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये लोकतंत्र को वरदान बनाना हमने बना दिया है, क्या हम दावा कर सकते हैं? और इसके लिए जरूरी है कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जिससे 125 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार कर सके। और इसके लिए हमारी बढ़ती हुई तेजी के साथ अर्थव्यवस्था ने विकास के द्वार खोले हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचने के बाद आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर कर देंगे। अभी हमसे आगे जर्मनी है, जापान है, चाइना है और अमेरिका है। 5 वर्षों के बाद जर्मनी और जापान हमसे पीछे हो जाएंगे, सिर्फ चाइना और अमेरिका बचेगा। और जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो चाइना और अमेरिका भी पीछे हो जाएगा और भारत इकोनॉमिक पावर बनके, सुपर पावर बनके, विश्व गुरु बनके और दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसा सपनों के भारत के निर्माण का महायज्ञ हमारे देश में चल रहा है, और इसलिए हमारा भविष्य बहुत बेहतर है। लेकिन फिर से वो सवाल खड़ा होता है कि यदि विकास की पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर लेंगे तो कहीं कुरीतियां तो विकृतियां तो हमारे समाज को गलत दिशा की ओर तो नहीं ले जाएंगी? मैं एक राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक समय था जब हम लोग अपने क्षेत्र में उदाहरण के रूप में कहते थे, सिंचाई बहुत अच्छी होने के कारण, कि हम सिंचाई के क्षेत्रफल को बढ़ाकर अपने राज्य को फलाने राज्य के की तरह बनाने का काम करेंगे। लेकिन बाद में वहां पर समृद्धि कुरूति लेके आ गई, और फिर वहां पर नशा और मादक चीजें ने वहां की पीढ़ियों को खराब करना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने फिर उस राज्य का उदाहरण देना बंद कर दिया। पहले कहते थे कि हम उस राज्य की तरह विकास करेंगे, बाद में जब देखा कि उस राज्य के बारे में इस प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं, ये उड़ता हुआ राज्य है, तो फिर हम लोगों ने वो उदाहरण बंद कर दिया कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करे। ये विकास अभिशाप बनता है, फिर इस विकास को वरदान बनाना है, लोकतंत्र को हमको वरदान बनाना है, तो इसके लिए हमें पीढ़ियों को सुधारना पड़ेगा। हमें मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक पावर को डेवलप करना पड़ेगा, मनुष्य का समाज के प्रति समर्पित और देश के प्रति समर्पित लोगों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस विकास को संभाल पाएंगे, तब जाके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, लंबे समय तक कायम रहने वाला विकास कहलाएगा। और इसके लिए हमें मनुष्य के अंदर की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, उनको सनातन धर्म से जोड़ना पड़ेगा। इस समय एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातन है, उसको भी पुनर्जीवित करने का, पुनर्स्थापना करने का एक लहर पूरे देश में चल रही है। ये भी एक अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, अब उसमें भी विवाद था कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जहां भगवान राम का जन्म हुआ है वहां पर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का और मदीना में मंदिर बनेगा? लेकिन इसको लेकर भी विवाद हम लोगों ने अपने देश में देखा है। क्या यह सही गलत दिशा में ले जाने वाले लोग का षड्यंत्र नहीं था? लेकिन वो षड्यंत्रकारी ताकतें परास्त हुई, हमारी जो मान्यता, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना हुई है, जिसने हमारे हौसले को बढ़ाया है। आज लोग सनातन को समझने लगे हैं, सनातन से अध्यात्म की ओर मुड़ने लगे। ये सनातन और अध्यात्म ये हमें भगवान से हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और आत्मा से परमात्मा जब जुड़ती है तो हमारे जो अंदर जो मानवीय गुण है, करुणा के, दया के, भलाई के, परोपकार के, शांति के, वो विकसित होते हैं। और ये गुण यदि मानव के विकसित हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को हम चलते हैं, ब्रह्म कुमारी भी हमेशा यही कहती है कि सारे दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, मानो सभी हमारे भाई हैं एक दूसरे के। हमें सभी के कल्याण के बारे में सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो। ये पवित्र भाव ईश्वरीय भाव हैं जो मानव जाति के कल्याण के लिए हैं, मानव जाति के विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। लेकिन मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन और अध्यात्म है, और इसलिए इन दोनों का जब आपने बहुत अच्छा टॉपिक है ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें सब कुछ समाहित है आपके इस विषय पे। इस विषय पे हम सबको लगातार चिंतन मंथन करते हुए और इस प्रकार के जो केंद्र हैं उनके प्रति समाज को एक अच्छे भाव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लोग तो हर जगह हैं। आप कितना भी अच्छा काम करें आपके कमियों को ढूंढने वाले भी लोग हैं, वो नेगेटिव मेंटेलिटी है वो। लेकिन पॉजिटिव मेंटेलिटी ये है कि इतना बड़ा संस्थान, हजारों लोग, मैं तो सुबह जब यहां पे घूम रहा था तो मैंने पूछा कि यहां कितने लोग, क्योंकि जब यहां पर कोई कार्यक्रम होता है तो 20 से 25 हजार लोग यहां पर आते हैं। अकेले आपका ये हॉल है 20 हजार लोगों का। हम लोग तो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो 20 हजार लोगों के लिए बहुत लंबा चौड़ी तैयारी करनी पड़ती है, आपने परमानेंट तैयारी कर ली है। यहां पर आके लोग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्राप्त करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, और फिर यहां से जाके सद्मार्ग में चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसलिए यहां पर आकर मुझे आप सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, और निश्चित रूप से यह विषय जो ग्लोबल समिट में आपने यहां पर 3 दिन लगातार लिया है, इसको देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, और इसे देश और दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग में असर पड़ेगा, और गलत दिशा में जाने लोग सही दिशा में आएंगे। तो एक तरफ विकास और एक तरफ अध्यात्म, ये दोनों हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद हम लोग ये गर्व कर सकेंगे कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है जो सारी दुनिया को सही दिशा में, गुरु क्या होता है, यही तो है कि लोगों को सही दिशा में ले जाने का दिशा दिखाए, मार्ग बताए। तो भारत, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में शिकागो में, और जब उन्होंने धर्म सभा में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने सारी दुनिया के धर्म गुरुओं के सामने, और जब उन्होंने कहा था कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो पूरा हॉल के लोग खड़े होके और तालियां बजाने लगे थे, क्योंकि वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन ही कहते थे लोग, ब्रदर्स एंड सिस्टर जैसा दिल को छूने वाला शब्द पहली बार स्वामी विवेकानंद जी के मुखारवृंद से दुनिया के लोगों ने देखा। उस समय उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और 21वीं सदी चल रही है, 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आजादी के, 21वीं सदी का मिड वे आ जाएगा, और उस समय भारत आर्थिक महाशक्ति बनके दुनिया का नेतृत्व करेगा, और भारत नेतृत्व करेगा तो दुनिया सही दिशा में चलेगी। भारत का नेतृत्व तो दुनिया के लिए जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीनी कितने आपस में जानी दुश्मन है, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि हमारी लड़ाई को अमेरिका और चाइना नहीं दूर समाप्त करा सकती, हमारी लड़ाई को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री समाप्त करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने का काम सिर्फ भारत कर सकता है। इसे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने की दिशा में जो चल रहा हमारा मिशन है, जो अभियान है, वो पूरा होना चाहिए। और इसलिए भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें हम सब सकारात्मक भूमिका निभाएं। यहां से जाने के बाद हम सब लोग जहां भी हमारा कार्य क्षेत्र है वहां पर लोगों को प्रेरित करें और उनको अध्यात्म सनातन से, क्योंकि अब तो गाड़ी चल पड़ी है साइंस और टेक्नोलॉजी वाली, उसको तो अब रुकने वाली नहीं है, अब हमें अध्यात्म और सनातन वाली गाड़ी को पहले ही चलाना पड़ेगा तब जाके, नहीं तो यदि ये गाड़ी थोड़ा पीछे हुई और वो गाड़ी आगे हुई तो फिर वही होगा जो रशिया और यूक्रेन की कर रहे हैं। और इसलिए इस गाड़ी को थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी वाली जो विकास की गाड़ी है उसे अध्यात्म और सनातन वाली गाड़ी उसे थोड़ा सा आगे चलानी पड़ेगी जिससे कि विकास वरदान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
अंतर मन और करतल ध्वनि से विशेष धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा, आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। बस राजेंद्र भाई से अनुरोध है, आप ऐसे खास मौकों पर आते रहिएगा। एक अनाउंसमेंट है। पूजा माता, उनकी बच्ची श्रेया स्टेज के पीछे बैठी है, जहां कहीं भी सुन रही हो श्रेया को लेकर जाएं। डॉक्टर महेश कुमार राठौड़ जी इंदौर से पधारे हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर आरडी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से उनका सत्कार सम्मान हो रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुशील शाक्य जी, अमृतसर विधायक फरुखाबाद यूपी से पधारे हैं, आपका भी स्वागत सत्कार और सम्मान कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से करेंगे। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी सम्मान कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर, सौरभा संगीता नृत्य कला परिषद मैंगलोर से पधारे, एक नृत्य पेश करें और हम सबको उमंग उत्साह से देशभक्ति से भर दें।
सस्य श्यामलम् मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्न पुलकितयामिनीं भुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी पवित्रीकृतपांसवे
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए दिल से शुक्रिया। राष्ट्रीय एकता का मंत्र, राष्ट्रभक्ति भावी यंत्र, राष्ट्र भावना का तंत्र, जिससे देश है ये स्वतंत्र, प्रेम से कहो वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारीज के वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के डायरेक्टर आदरणीय भ्राता डॉक्टर बी के पंड्यामणि भाई जी। ब्रह्मा कुमारीज के वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज हमें आध्यात्मिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन शैली अर्थात पॉजिटिव हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की शिक्षा देते हैं। तो आइए अपने जीवन को आध्यात्मिक व दिव्य मूल्यों से सजाएं। और धन्यवाद ज्ञापित करने हमारे साथ हैं डॉक्टर पंड्यामणि भाई।
ओम शांति। जो ग्लोबल समिट 2024 की वैलिडेटरी प्रोग्राम में अभी हम पहुंचे हैं, अभी इस कार्यक्रम का जो सक्सेस है उसका जो पीछे हैं करण करणहार परमपिता परमात्मा शिव हैं, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा आदरणीय जैसे कि अव्यक्त बाप दादा हैं जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो वतन से हम सबको इंस्पिरेशन देते रहते हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम का शुरुआत से अभी तक जो इसके सूत्रधार हैं तो ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जो को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का मंच में जो चीफ गेस्ट हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबको भी तहे दिल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके बिना तो ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो सकता था। इसलिए सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी और राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी हैं। उनसे अनुरोध है अपने संकल्पों से, अपनी भावनाओं से, अपनी दृष्टि से हैंड वेव करके आप सबको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देंगी। आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी यूथ विंग के चेयरपर्सन, आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी वुमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर, आपने पधारकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, आपने शुभ भावनाओं की बौछार की, उसके लिए आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। एक मिनट सभी साइलेंस में बैठकर कार्यक्रम समापन करेंगे। ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना सबको सब दे प्यार सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार सुखमय हो संसार जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए